आज के सत्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। अभी हमारा ये जो सत्र है, आप सभी सोचेंगे कि अभी सुबह से हम सुन रहे, शायद अभी भी हमको सुनना है, और मुझे इसलिए लगता है शायद कुछ लोग उठकर बाहर गए हैं, लेकिन जो भी बाहर खड़े हमारे भाई बहने, उनसे अनुरोध है कि अगर इस सेशन को मिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने बहुत बड़ी चीज मिस की है, क्योंकि इस सेशन में हम आपसे सुनेंगे। ये हमारा सेशन बहुत इंटरैक्टिव रहेगा और इस सेशन को आप सभी बहुत एंजॉय करेंगे। हम लाइफ के डिफरेंट पहलूज को भी देखेंगे, समझेंगे इसे। तो ये हमारा लेक्चर सेशन नहीं है, एक्सरसाइज सेशन है। तो इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी शीघ्र अति शीघ्र हॉल के अंदर आ जाए, और इस सेशन को और लाइव बनाना है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है, क्या आप उस रिक्वेस्ट को मानेंगे? मानेंगे सभी, खास हमारे जो पीछे भाई बहने बैठे उनके लिए। अगर इस सेशन का पूरा मजा लेना चाहते तो प्लीज पीछे की सीट छोड़कर आगे आ जाइए, क्योंकि हम अभी इस सेशन में एक फैमिली की तरह बैठेंगे सभी, है ना। इस तरह नहीं कि मैं स्पीकर हूं और आप सब सुनने के लिए बैठे हैं, हम सब फैमिली मेंबर्स है और इस सेशन को एंजॉय करने के लिए एज अ फैमिली हम सब यहां बैठे हुए हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखेंगे भी। ये हमारा सेशन है व्हाट मूव्स मी, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जीवन में प्रेरणा देती हैं, और वो प्रेरणाएं हमारी जिंदगी को मूव करती है, यानी आगे बढ़ाती हैं। उन चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, और उन चीजों को जानने के बाद अपने जीवन में अपनाने का एक संकल्प हम सभी करेंगे। देखिए, आप सभी पिछले दो दिनों से यहां पर आए हैं, और दो दिनों से जब यहां पर आप हैं, बहुत सारी चीजों को आपने सुना, मेडिटेशन किया, प्रैक्टिस किया, समझा, बहुत सारी चीजें आपने यहां अनुभव भी की हैं। उन सारी बातों को इस सेशन के अंदर हम अनुभव करेंगे, लेकिन हम इस सेशन की शुरुआत एक दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे। एक बहुत सुंदर गीत के द्वारा हम करेंगे सेशन की शुरुआत। ये गीत आप सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक उत्साह, एक प्रेरणा आएगी, एक शक्ति आएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब इस माहौल में हम सब बैठे हैं तो निश्चित अपने घर परिवार, अपनी जॉब, बिजनेस, सबको छोड़कर हम यहां बहुत फ्री, निश्चिंत होकर बैठे हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस माहौल में जब से आए हैं, आपको ये भी याद नहीं होगा कि आज दिनांक कौन सा है, डेट कौन सी है और आज डे कौन सा है, सब भूल गया है ना। यहाँ के रंग में ऐसे रंग गए हैं, मस्त हो गए हैं, कोई चिंताएं नहीं है। और सबसे ज्यादा खुश कौन है पता है? हमारी बहने, जो माताएं बहने ना, क्योंकि किचन से छुट्टी है, इसलिए सबसे ज्यादा खुश वही है। तो आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे दो दिन से, कर रहे सभी एंजॉय? आनंद आ रहा है सभी को? मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, सब मजा ले रहे। आपकी उपस्थिति बता रही कि हाँ, आप सभी को आनंद आ रहा है। तो इस गीत के द्वारा हम शुरुआत करते, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जिंदगी में समस्याएं बहुत हैं, परिस्थितियां बहुत हैं, और जब कोई समस्या, कोई परिस्थिति आती है तो हम यही महसूस करते हैं, हे भगवान, इतनी बड़ी परिस्थिति आई, अब मदद करो। हम परिस्थितियों को कहते कि परिस्थितियां तुम क्यों आती हो, क्यों परेशान करती हो। लोगों के सामने हम यही कहते कि मेरे सामने इतनी बड़ी बात आ गई, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये घटना घट गई, मुझे इस सिचुएशन ने बिल्कुल नीचे ला दिया है, मेरे मन की स्थिति को बिल्कुल खराब कर दिया है, मुझे बहुत दुखी कर दिया इस सिचुएशन ने। हम कैसे फेस करें इन बातों को? लेकिन इस गीत को सुनने के बाद एक बहुत सुंदर मैसेज आपको मिलेगा कि आपको परिस्थितियों से क्या कहना है। क्योंकि हमारी दादी जी हमेशा कहा करती थी कि जो बातें हैं, परिस्थितियां हैं, वो इंसान से ज्यादा समझदार है। बातें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम उन बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं, इसलिए बातें हमसे ज्यादा समझदार हैं। तो कभी भी बातें और परिस्थितियां बड़ी नहीं होती, बड़ा कौन होता है? इस गीत के द्वारा हम समझेंगे, इस गीत के भाव को हम सब अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे सेशन की शुरुआत है।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
सुनी सभी ने ध्यान से, अब अगर परिस्थितियां आएंगी तो क्या कहेंगे? परिस्थितियां बड़ी नहीं है, परिस्थितियों से बड़ा तो मेरा खुदा है, और जब खुदा मेरे साथ है तो परिस्थितियां मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, और जब परिस्थितियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? खुशनुमा और खूबसूरत जिंदगी होगी। तो पिछले दो दिनों से आप सभी इस कैंपस में रह रहे हैं, यहाँ के हर चीज को आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, आप पिछले दो दिन से यहाँ हैं, आपको यहाँ की कौन सी बातें बहुत अच्छी लगी, या कौन सी ऐसी चीजें जिन्होंने आपको प्रेरित किया किसी बात के लिए? देखिए, ये हमारा सेशन, मैंने इसलिए पहले से ही कहा कि हमारा इसमें काफी इंट्रैक्शन होगा, इसमें हम आपसे सुनेंगे, मैं कम सुनाऊंगी आपसे ज्यादा सुनूंगी, ठीक है? तो सभी तैयार है ना? यस, बोलिए। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। यस,
मेडिटेशन।
मेडिटेशन बहुत अच्छा। सेल्फलेस सर्विस। पीसफुल एनवायरनमेंट। डेडिकेशन। यस जी। क्लीनलीनेस। यहाँ कोई टेंशन नहीं है। स्माइलिंग फेस सबके। यस, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस। यस, इस साइड से थोड़ा। अच्छा, बहुत स्पष्ट सभी का एटीट्यूड, क्लियरिंग एटीट्यूड। जी जी, अपने घर का सुख। बहुत अच्छा, आपको महसूस हो रहा है ये हमारा घर है। खाना बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, ये गोल्ड प्लेस है, हर चीज बहुत अच्छी लग रही है जी। बहुत आनंद मिल रहा है जी। आप ही? यस, साइलेंस जी। अच्छा, हर चीज अच्छी, किसी एक को अच्छा बताना ही अन्याय होगा। बहुत अच्छी, आप सभी की फीलिंग से बहुत अच्छा अनुभव किया आप सभी ने। ब्रह्मा कुमारी जादूगर है। तो जादू लग गया आपको? लग गया? आप ही की तरह। यस, लास्ट, यहाँ का मैनेजमेंट जी, डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट। जी जी बिल्कुल यस खुशियाँ ही खुशियाँ गम का नाम उनसे। ठीक है, आगे और भी सुनाने के लिए चांस मिलेंगे, बहुत सारी बातें शेयर करनी है हमको। आप ही की तरह एक बार एक व्यक्ति बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन, उनकी कंपनी जिसका बहुत नाम था, लेकिन अचानक कुछ ऐसे परिवर्तन आए कि कंपनी काफी बैड फ्रेज से गुजरने लगी। उन्होंने काफी कोशिश किया कंपनी को फिर से अपने लेवल पर ले जाने के लिए, आगे उठाने के लिए। बहुत से मैनेजमेंट गुरुज को बुलाया, काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, बट कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। उसी बीच उनको ब्रह्मा कुमारी संस्था से ही, जैसे आपको इनविटेशन मिला, ऐसे ही यहाँ के कॉन्फ्रेंस का ब्रोशियर उनको मिला, इन्विटेशन कार्ड मिला, और उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार मैं माउंट आबू भी जाकर देखूं कि आखिर वहां से शायद मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिससे मैं अपनी कंपनी को फिर से वापस अपने स्टेटस में लेकर आ सकता हूं। जब वो यहाँ आबू आए और यहाँ आकर उन्होंने बहुत गौर से हर चीज को देखा, हर डिपार्टमेंट को, हर एक्टिविटीज को, और उन्होंने ये महसूस किया, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, कि उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ हर चीज ऑटोमेटिक चल रही है। यहाँ नो कमांड, नो कंट्रोल, कोई किसी को ऑर्डर देता हुआ, कोई किसी को कुछ कहता हुआ, कमांड देता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो उनको भी यहाँ के मैनेजमेंट ने बहुत प्रेरित किया, और वो थे नागार्जुना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन स्वर्गीय केवीके राजू जी। दो दिन के बाद उन्हें हमारी दादी जी, जो हमारी भूतपूर्व चीफ थी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, उनसे मिलने का एक सुनहरा अवसर मिला। और तब दादी जी से उन्होंने पूछा कि दादी जी आखिर क्या वजह है जो इतना स्मूथली सारा मैनेजमेंट चल रहा है, इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, इतने हजारों भाई बहने यहाँ कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई तनाव की रेखाएं नहीं है। आखिर क्या वजह है, क्या चीज है जो इन लोगों को प्रेरित कर रही है, इन लोगों को चला रही है? तो दादी जी ने दो शब्द कहे थे, स्पिरिचुअल विजडम एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। दो चीजें हैं यहाँ की जो यहाँ नेचुरल रूप में, यहाँ के जितने भी हमारे भाई बहने हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, उनको चला रही है। निश्चित रूप से आप दो दिन से पिछले यहाँ की स्पिरिचुअल विजडम को, स्पिरिचुअल नॉलेज को सुन रहे, समझ रहे और जान रहे हैं, और इसीलिए शायद आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही। लेकिन जैसे किसी ने कहा, हर चीज अच्छी है, लेकिन किसी ने कहा हमें यहाँ का मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, किसी ने कहा हमें यहाँ की नॉलेज बहुत अच्छी लगी। वास्तव में हम जिस भी स्थान पर जाते हैं, हमें आवश्यकता है कि अगर हम समय निकाल कर गए हैं तो वहां की हर चीज को समझे, परखे और सीखे। अगर इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन भी बहुत उन्नति के शिखर तक पहुंचेगा, हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। वास्तविकता में जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं, हमें आगे बढ़ाती है। जैसे कौन सी बातें, जैसे हमने ज्ञान की बात कही, आध्यात्मिक ज्ञान है, ऐसी और कौन सी चीजें जो लाइफ में हमारे जो 24 घंटे की हमारी दिनचर्या उसमें हमें प्रेरित करती रहती है। हाँ, यहाँ के अलावा हमारी अपनी लाइफ में भी ज्ञान को प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करते हैं। यस सर, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर कोई लाइफ का इंसिडेंस, किसी का, किसी की बायोग्राफी, कोई कहानी, कोई घटना, कोई गीत, कोई कविता, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लाइफ में प्रेरित करती है। आप यहाँ आए, आपने इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझा, तो यह आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्रेरित करेगा। लेकिन आप अपनी डेली रूटीन, अपनी लाइफ को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको लाइफ में प्रेरणा देती है, आगे बढ़ाती। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी जिन्होंने आपको प्रेरित किया होगा। ये हमारा सेशन है कि हमारे अंदर जो भरी है प्रेरणाएं, आज वो प्रेरणाएं हम आपस में एक दूसरे से शेयर करें ताकि एक दूसरे को भी मोटिवेशन मिले। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे मैं बात कर रही थी कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां होती, किसी की जीवनी होती जो हमको प्रेरित करती है। आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्तित्व होगा जिसने आपको प्रेरित किया होगा, होगा निश्चित रूप से, है कि नहीं है? होगा कोई ना कोई। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आदरणीय भारत भूषण भाई जी को, जिनको अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर ब्रदर हैं और हमारी जो संस्था की जो दादियां हैं, जो हमारे सीनियर्स दादियां बड़े हैं, काफी उनके अंग संग रहे हुए हैं। एक चेयर ले आइए यहां पर। काफी उनके अंग संग रहे हैं और काफी सारे कार्य उनके साथ किए हैं, तो निश्चित तौर पर आप हमेशा हमसे शेयर करते हैं दादियों की छोटी छोटी बातें, उनकी बातें सुनकर हमको प्रेरणा मिलती है। तो इतने वर्षों से आप इस ईश्वरीय ज्ञान में, इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं, तो हम आज उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि उनको ऐसी कौन सी बात हमारी दादियों की जीवन की प्रेरणा जिसने प्रेरित किया। और खास करके मुझे याद है कि आदरणीय भाई साहब ज्यादातर हमारी दादी चंद्रमणि जी के साथ रहे हुए, उनकी पालना ली हुई है। हमारी चंद्रमणि दादी जी जिनका जिन्होंने अपनी पुरानी देह का त्याग काफी वर्ष पूर्व किया, ये जो ज्ञान सरोवर परिसर है, ये एकेडमी है, पहले आदरणीय दादी जी ही संभाला करते थे और बहुत प्यार से। एक ऐसी शक्ति थी जिसे परमात्मा कहते थे कि ये शेरनी शक्ति है, भगवान जी ने कहते थे कि ये शेरनी शक्ति है। दादी जी के जीवन की बहुत सारी ऐसी बातें और घटनाएं हैं। मैं तो बहुत छोटी थी तब दादी जी से मैंने बहुत पालना ली, उनकी गोदी ली है, लेकिन भाई साहब तो उनके अंग संग रहे, तो मैं चाहूंगी कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने एक बात रखे ताकि हमें भी प्रेरणा मिले कि ऐसे हमारे भी जीवन में कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमें प्रेरित करते हैं। तो मैं भाई साहब से कहूंगी दादी जी के साथ का कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी घटना हमें सुनाए जो आपके दिल को छुई है और शायद हमारे दिल को भी छू जाए।
ओम शांति। थैंक यू माधुरी बहन। नो डाउट मैं दादी चंद्रमणि के बहुत मुझे सौभाग्य मिला उनके अंग संग रहने का, और वो काफी समय हो गया, संपूर्ण हो गए, लेकिन मैं उन्हें शायद ही कोई 3-4 दिन होते हों, कभी ना कभी कोई उनकी शिक्षा मुझे जरूर याद आती है, भिन्न भिन्न टाइम पर इतना निकटता रही। तो एक दो चीजें सुनाऊंगा जो खास माधुरी बहन ने कहा। एक बार कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया था, तो वहां पर बहुत बड़ा कुंभ मेला, दादी जी ने मेरे को कहा था कि भारत भूषण तेरे को यहां आना है। मैं दादी मुझे उस समय जॉब में था, 86 की बात है, कह नहीं तेरे को आना है, मैं छुट्टी सब मिल जाएगी, तुम्हें आना है। दादी का ऑर्डर माना, बाबा का ऑर्डर, तो मैं कैसे भी छुट्टी मैनेज करके वहां रहा 1.5 मास दादी के साथ। बहुत ही सुंदर अनुभव जिंदगी के, बड़े सुंदर अनुभव। तो वहां पर बहुत मेहनत से हमने जो इतने सारे स्टॉल लगाए थे उसमें एक लाइट हाउस बनाया था बहुत बड़ा। तो जब सब बिल्कुल व्यवस्थित हो गया, 5-7 दिन के बाद इतना तेज तूफान आया। बाय द वे ऑफिस में दादी जी बैठे थे और मैं सामने बैठा था, तूफान में शीटें उड़ रही थी, कहीं कुछ, वो लाइट हाउस इतना जो मेहनत से 15 दिन से बना वो सारा गिर गया। और ये डर था कि शीट भी कोई ना गिरे, कोई कोई खड़क रही थी, कोई कुछ हो रहा था। मैं जैसे हमें कहते हैं कितनी बड़ी आपदा हो आप मेडिटेशन में स्थित हो जाएं, दादी जी मेडिटेशन में थी, मैं कभी तो उन्हें देखूं और कभी छत को देखूं, भाई हिल रही हैं थोड़ी थोड़ी, खड़क रही हैं। खैर मैं भी पीसफुल रहा, आधा घंटा खूब तूफान चला और उसके बाद शांत हो गया। मैंने दादी से पहला प्रश्न पूछा, मैं कह दादी इतना तेज तूफान, लाइट हाउस गिर गया, हमारी शीटें थोड़ी खड़क रही थी, क्या आपको डर नहीं लगा कि कोई शीट ऊपर गिर जाए? तो दादी बड़े जोर से हंसे, इतना जो बात ना पूछो, अरे भाई ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम हैं, बाबा ने बहुत वर्ष पहले ही हमें इनसे तो क्रॉस कर दिया है, हमें कभी जिंदगी में दादी ने जो अपनी अवस्था बताई, हमें कभी जिंदगी में आता ही नहीं, ये नहीं सोचते जो होगा कल्याणकारी, नहीं होगा ही कल्याणकारी है, कल्याण हो ही नहीं सकता, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं बाबा की याद। तो आई वॉज सरप्राइज, इतनी ऊंची स्थिति में थे दादी और उस ढंग से, तो मैं उनकी लाइफ से इतना इन्फ्लुएंस हुआ और मेरी इतनी अच्छी मेडिटेशन की स्टेज रही, मेरे पे कोई लाइबिलिटीज भी नहीं थी। तो मैंने जैसे ही डेढ़ महीना पूरा हुआ, दादी जी मुझे गिफ्ट दे, मैं कह नहीं ये गिफ्ट नहीं चाहिए, क्या मुझे सरेंडर होना, सरेंडर होना, अरे नहीं भाई। यहाँ ब्रदर्स को अक्सर मोटिवेट कम करते हैं, जितने सेंटर्स हैं वहां मोस्टली बहने रहती हैं, तो ब्रदर्स के हेडक्वार्टर पे जरूर बड़े बड़े काम होते। मैं नहीं दादी मुझे सरेंडर, नहीं 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 भाई अभी तो यंग है, जॉब करेगा ये करेगा फिर, नहीं दादी मुझे सरेंडर, तुझे पता है सरेंडर का क्या मतलब है? मैं क्या सरेंडर माना, सर अंडर, फिर जो शिव बाबा कहे वैसे करना पड़ेगा। मैंने कहा जी सर अंडर तो अंडर, तो मैंने कैसे भी उन्हें कन्विंस करके, एंड आई केम आई रिजाइंड इन 87 एंड फुली डेडिकेटेड टू दिस इंस्टीट्यूट। मेरे को इतना बहुत कैसे भी मनाया मैंने, और दादी को और कुछ पेरेंट्स कई और से भी फ्रीडम था, उन्होंने भी छुट्टी दिया पिताजी ने माता जी ने, तब उस उनके स्पॉट के कारण शी कन्विंस्ड और वो सब कुछ। मैं एक तो ये दादी का देखा, दूसरा टेररिज्म के दिन थे, अमृतसर से गए थे बटाला, फिर तरन तारण आप जानते हैं रोज वहां गोलियां चलती थी, तरन तारण के छतों से आप डेली खून की होली देख, रोज चलती थी। वहां एसएसपी चीफ गेस्ट थे सीताराम बटाल, कहे तरन तारण जा रहे हैं, कहो तो मैं सिक्योरिटी आपको देता हूं, आगे पीछे गाड़ी होगी, दादी जी की ज्वाइंट चीफ है आपकी संस्था के, और आप वहां फंक्शन करेंगे, कैसे करेंगे? मैं कहा मैं दादी से पूछता हूं अगर सिक्योरिटी, दादी से पूछा मैं, कहा दादी वो कहते हैं सिक्योरिटी दे दूं, वहां तो रोज गोलियां चल रही हैं, और कैसे आप फंक्शन करोगे सरेआम, कोई गोलियों में दम 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 करके चला गया। दादी बड़े हंसे, अरे भाई उसे कह दो हमारे साथ सुप्रीम सिक्योरिटी है, बस और कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमारे साथ सुप्रीम सिक्योरिटी है। दादी को बाबा शेरे पंजाब कहते थे, बड़ी निर्भय थी, बहुत निर्भय थी, और सचमुच हम गए वहां फंक्शन किया सब कुछ किया, लेकिन सच्चाई है प्योरिटी है सब कुछ है, फिर भगवान कैसे साथ देता है। आप देखते हो शायद ही कोई इंस्टीट्यूशन के हेड मिलेंगे जहां सिक्योरिटी ना हो, पर यहां दादी जानकी कल दादी रतनमणि कितने आप देखते हैं, इंटरनेशनल संस्था है लेकिन कभी भी कोई गनमैन लेके साथ नहीं चलती है, कोई सिक्योरिटी नहीं, एक शिव बाबा की सिक्योरिटी। जब कोई दुश्मन ही नहीं तो किससे डर, कोई वैरी ही नहीं तो किससे डर, डर उसको जिसके कुछ दुश्मन कुछ मित्र, इनके तो सारे ही मित्र हैं, इसलिए दिस इज द माय एक्सपीरियंस लिटिल।
बहुत बहुत थैंक्स,
थैंक यू
आदरणीय भारत भूषण भाई जी का, बहुत ही सुंदर अपने अनुभव आपने शेयर किए, जो हमने गीत सुना कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। ये गीत ऐसे ही नहीं बना है, निश्चित हमारी दादियों के जीवन के यह अनुभव प्रैक्टिकल जिस आधार पर आज ये गीत सुनते हैं, हम दादियों को याद करते हैं, तो लगता है कि सचमुच अगर भगवान के बने हैं तो पूरे निश्चय के साथ। तो आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव होगा, आप में से कोई शेयर करेंगे, आइए शॉर्ट में करेंगे सभी, हाँ क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हम सभी को शेयर करनी है। नहीं ये चालू है, यहां आ जाइए लाइट में, बहुत शॉर्ट में बताएंगे, है ना, कोई घटना जिसने आपको प्रेरित किया है।
हाँ। ओम शांति, मैं बीएन शाह हूं, चीफ इंजीनियर डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन। जब मैंने सीटीपीएस चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन में ज्वाइन किया तो बहुत सारी बातें से रूबरू हुआ। वैसे मैं मूव हो जाता हूं कोई सफरिंग को देख करके, तो मैंने देखा कि हमारे जो वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स, उनका सैलरी टाइम पर नहीं मिलता है, मिनिमम वेजेस जो हैं, मिनिमम अलाउंसेस जो हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी होती है। तो इमीडिएटली मैंने अपना एक टीम बनाया, उसको इन्वेस्टिगेट कराया और इसमें जो कमियां थी उसको दूर करने का ऑर्डर किया और उसको मॉनिटर भी किया और करीब 3 से 4 महीने के अंदर में ये सारी कमियों को मैंने दूर किया। तो ये एक छोटी सी घटना थी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। थैंक यू।
बहुत अच्छा। और कोई सुनाएंगे कोई ऐसी घटना जो किसी और को देखकर आपको प्रेरणा मिली हो जिंदगी में कुछ करने की? अपना नाम और कहां से आए बताएंगे, फिर सुनाएंगे।
मेरा नाम चरण सिंह है, मैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नासिक में काम कर रहा हूं। जैसे भारत भूषण भाई ने बताया वो दादी जी से प्रेरणा ली, वैसे मैंने भारत भूषण भाई जी से प्रेरणा ली। एक किस्सा बताता हूँ 2013 का। 2013 में मैं यहाँ आया था, उससे पहले मैं रेगुलर जैसे लोग मांसाहार करते हैं और नॉनवेज खाते हैं, मैं 7 दिन में से 5 दिन ऐसा करता था, मिनिमम 5 दिन। और मुझे एक चेतन भाई लेके आए थे और हमारे जोगड़ेकर साहब। तो जैसे आज भारत भूषण भाई ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में से आप बाहर गए तो आप वहां के हो जाते, तो वो बात मुझे उस वक्त बहुत चैलेंजिंग लगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं जाना है और मैं भारत भूषण भाई जी से मिलूंगा। और मैं 2013 के बाद 2015 पे यहां पे आया हूं और मैं वो मैग्नेटिक फील्ड से भारत भूषण भाई जी से मैं पूरे स्टेज पे बोलना चाहता हूं कि आपसे प्रेरित होके आपके वो स्टेटमेंट अभी भी मेरे दिमाग में कान में गूंज रहे और मैं अभी भी वो मैग्नेटिक फील्ड में से कभी भी बाहर नहीं निकला हूं। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। और कभी निकलना भी नहीं है। और आप सभी भी क्या करेंगे, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ अगर कहते कि या फॉलो करेंगे तो सब हाथ उठाते कि हाँ जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड है ना। और यहाँ से बाहर जाते हैं क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या अपने आप को उसी फील्ड में रखेंगे, फील्ड का दायरा बढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया, खुद मैग्नेट बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात, आप यहां से जाइए तो आप ये मैग्नेटिक एनर्जी अपने अंदर लेकर जाइए, ऐसा एक मैग्नेट बन जाइए जो औरों को भी आप प्रेरणा दे सके, औरों की लाइफ को आप चेंज कर सके। और कोई शेयर करेंगे अपना कोई एक्सपीरियंस? यस, आइए।
ओम शांति। मैं बीके ग्रुप का एक छोटा सा मेंबर हूं, इंदौर से आया हूं। मेरा नाम सुरेश घोरियानी है। मैं गोवा से जब 2013 से लौटा तो वहां पर शिविर चल रहा था हमारे घर के नजदीक, जो कि आरती बहन जी के अंडर में आता है और मीरा बहन जी ने उसका पूरा बंदोबस्त किया था। तो वो शिविर में सुनने गया, शिविर मैंने 7 दिन अटेंड किया और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं।
हेलो, शॉर्ट में सुनाइएगा थोड़ा सा। हा?
तो उसके बाद में मैं बराबर रेगुलर वहां पर मीरा बहन जी है हमारी, उनके पास बराबर जाता हूँ सुबह को 7 बजे और 8 बजे तक सुनता हूँ और कभी कभी मिस हो जाता है।
हाँ आप सुनाइए।
कभी कभी मिस हो जाता है तो मैं शाम को जाता हूँ। तो मैंने देखा कि एक्चुअली मैं डायबिटिक हूं 38 ईयर्स से। मैं 38 ईयर्स से डायबिटिक हूं, इंसुलिन लेता था। 1.25 साल के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया कि इंसुलिन मेरा छूट गई। बराबर मैं हर वीक में चेक करता था अपना, जबकि मेरा पीपी 515 रहता था, 313 हुआ, फिर 178 हुआ और अभी मेरा नॉर्मल 140-145 आता है। और सिर्फ मैं 2 टेबलेट लेता हूं, वो भी पिछले 3 दिन से एक टेबलेट मैंने अपने आप करके और डॉक्टर इंदौर से मैंने पूछा, बोले नहीं अब आप एक कर लीजिए, यू स्टार्ट ग्लाइकोमेट जीपी 1 इंस्टेड ऑफ टेकिंग जीपी 2। तो ये चमत्कार जो बाबा के यहां पर मेरे में हुआ है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं सिविल इंजीनियर हूं, आई एम ए चीफ टेक्निकल प्रोजेक्ट सिविल, तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरीके से जरूर और किसी के साथ में भी ऐसा बाबा के दरबार में चमत्कार जरूर होगा। पिछली बार भी मैं आया था, ये मेरा चौथा इंसिडेंस है, लेकिन इस शिविर में इंजीनियर में पहला शिविर है। पिछली बार में आया था मेडिकल इंजीनियर।
शॉर्ट में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस सिर्फ शेयर कीजिए क्योंकि सबको चांस मिला।
ओम शांति।
सिर्फ वो घटना बताइए आप सभी, जिस घटना ने आपको प्रेरित किया है।
ओम शांति। मैं धीरूभाई पटेल, कमिंग फ्रॉम अरवली डिस्ट्रिक्ट। पहले मैं एक बता दूं, मैं कोई संप्रदाय के साथ जुड़ा नहीं हूं, कोई भी संप्रदाय अभी तक, कोई भी संप्रदाय का टीला कंठी नहीं लिया है ईश्वर के सिवाय, मैं किसी में कुछ मानता नहीं हूं। अच्छा, ऐसा हुआ कि हमारे यहां एक ट्रस्ट हॉस्पिटल 150 बेड का हॉस्पिटल 10 साल बंद पड़ा था, कोई ये हॉस्पिटल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। मेरे जो मैं अभी आनंद में रहता हूं, वहां से 102 किलोमीटर हॉस्पिटल दूर है, मेरा नेटिव प्लेस वहां है। तो सब लोग ऐसे परेशान हो गए कि भाई पैसा नहीं मिलता है, हॉस्पिटल बंद है, ट्रस्ट हॉस्पिटल है, कोई पैसा नहीं देता है। तो पता नहीं मुझको क्या हुआ, बोला कि ठीक है अगर आपको चलाने की हिम्मत नहीं है तो दे दो, मैं चला लूंगा। मैंने चालू तो किया जाने का, हर रोज हर अठवाड़े दो दिन में जाता था। सब लोग हंसते थे कि भाई हम 10 साल से मर गए इधर, कुछ नहीं कर पाए, आप क्या कर पाएंगे, मत आओ। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, मैं ये हॉस्पिटल में आऊंगा, ये ऑफिस में मैं आऊंगा, ये दीवार से बात करके जाऊंगा। मुझको पता नहीं इतनी श्रद्धा कहां से आ गई, रियली मुझको कोई पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना श्रद्धा मेरी थी, इतनी श्रद्धा थी जीवन में कि कुछ कर पाऊंगा। तो इसके बाद हम गांव में ढूंढे, ऐसे ऐसे ढूंढे और ऐसे चमत्कार हुआ। दिल में ऐसा तो होता है कि कोई दिन अच्छा आएगा। 3-4 साल में हर साल हमको 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ का डोनेशन मिलने लगा। इसके बाद हमने हॉस्पिटल ऐसी चलती है, अभी 50 साल पूरा हुआ, वह हमने डायलिसिस मशीन डाले है, सीटी स्कैन है, अभी नर्सिंग हॉस्पिटल, अरे नर्सिंग कॉलेज किया है, नर्सिंग कोर्स किया है।
अभी
350 बहनों को हम पढ़ाते हैं, वहां के रोजी मिलती है। और मुझको इतना आनंद है कि किसी का कोई किसी का आशीर्वाद मेरे पर नहीं है सिवाय के ईश्वर का। तो अपने मन में जो मजबूत हो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो इसको किसी किसी का आधार तो जो लेना पड़ता है, और आधार जो भी लेता है तो भी इतना अच्छा तो मिला नहीं मिला, उस पर संशय हुआ तो कुछ नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग एंड दैट इज गॉड फॉर अस।
बहुत अच्छा। लास्ट है ना आपका, शॉर्ट में सुनाइएगा क्योंकि समय हो रहा है।
ओम शांति। मेरा नाम कृष्ण कुमार अदलखा है और मैं स्वराज माजदा चंडीगढ़ में एज जनरल मैनेजर काम कर रहा हूं।
माइक नजदीक कीजिए।
हेलो। मेरे जिंदगी में मेरे पिताजी मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम लोग पार्टीशन के बाद इंडिया में आए थे, मैं तो बाद में पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी के पूरा परिवार जो है वो पार्टीशन से पहले वहां कत्ल हो गया या जो भी कह दीजिए, वो वापस नहीं आ पाए। पर उनको मैंने जिंदगी में एक चीज देखी कि किसी भी परिस्थिति में उन्होंने ईश्वर का आसरा लिया और इस जीवन नैया को बहुत बखूबी दूसरों की सेवा करने में व्यतीत किया। और ना सिर्फ ये, हम लोग सात भाई बहन थे, हमारा भी उन्होंने उचित पालन पोषण किया। सभी लोग हम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो मेरी जिंदगी में मेरे पिताजी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और उसके बाद मेरा ईश्वर। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट में नेक्स्ट चीज को शेयर करेंगे। देखिए बहुत सारे व्यक्तित्व हमारे जीवन में आते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, उनके साथ बीते हुए पल, उनके साथ बीती हुई घटनाएं हमें प्रेरणा देती हैं। जैसे लास्ट में भाई साहब ने बताया कि उनके पिता उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे, उन्होंने सेवा की सभी की और एक ईश्वर पर आस्था रखकर आगे बढ़ते रहे, उस बात ने प्रेरित किया। तो किसी न किसी व्यक्ति के जीवन की कोई घटनाएं हमें जीवन में प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, हमें लाइफ टाइम वो चीजें याद रहती हैं। ऐसे दूसरी बात हम कर रहे थे, जैसे जिंदगी है तो मुझे एक गीत की लाइन याद आ रही थी कि जीवन है क्या गीत बिना, जीवन है क्या संगीत बिना। एक गीत की लाइन है ये जो मुझे हमेशा याद आती है और मैं महसूस करती हूँ कि सचमुच हमारे लाइफ में गीत संगीत का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। आप जब भी कभी उदास होते बहुत अच्छे गीत सुनिए, ऑटोमेटिक आपकी उदासी गायब हो जाएगी। बहुत अच्छे गीत जिनको सुनने से कई बार जिंदगी में हमें बहुत उत्साह आता है, जिस गीत की लाइन हमारे दिल को छू लेती है, हमें प्रेरणा देती है कुछ करने की। निश्चित आपके जीवन में भी आपकी पसंदीदा भी कुछ ऐसे गीत होंगे जो आपको प्रेरणा देते होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक गीत हमेशा बहुत प्रेरणा देता है और बहुत ही अच्छा लगता है वो गीत सुनना, और शायद वो गीत आपकी पसंद भी होगा। तो उस गीत को मैं गाऊंगी तो नहीं, लेकिन यार जरूर हम सुनेंगे और मैं चाहूंगी कि आप सब उस गीत में साथ दें। साथ देंगे सभी? तो उस गीत को हम ध्यान से सुनेंगे और हम सभी साथ में गाएंगे भी उस गीत को, ठीक है? पसंद है गीत सभी को? ठीक है, सब साथ में गाएंगे इस गीत को और महसूस करेंगे इस गीत के भाव को अपने अंदर। ताली से साथ देंगे सभी।
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
गाइए सभी।
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी हम साथ
खड़े हो जाइए,
ला 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 ला
निश्चित रूप से जिंदगी प्यार का गीत है, और जिंदगी तभी खूबसूरत है जब तक आप इस गीत को गा रहे हैं। अगर इस प्यार के गीत को गाना बंद कर दिया तो शायद जिंदगी की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये तो मैंने अपनी बात सुनाई कि ये गीत मुझे बहुत प्रेरित करता है और बहुत ही पसंद आता है, ये प्रेरणा देता है। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की बाधाएं आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अंधकार है तो दीपक जलाइए, रोशनी हो जाएगी। कांटे कितने भी हैं लेकिन वो परमात्मा कोई ना कोई रास्ता जरूर देता है, तो हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है ये गीत। ऐसे आपका भी कोई पसंदीदा गीत होगा तो मैं चाहूंगी कि आज आप वो गीत हमारे बीच शेयर करें, तो आप में से कोई करेंगे? जो आपका बहुत पसंदीदा गीत हो और वो गीत आपको हमेशा प्रेरित करता हो। यस, आइए। ये मत सोचिएगा कि हम अच्छे सिंगर नहीं हैं, लेकिन जो आप दिल से गाएंगे असली तो गीत वही होगा।
ओम शांति। मेरा फेवरेट गीत है काला पत्थर फिल्म का, एक जिंदगी एक रास्ता जो थम गए तो कुछ नहीं, हर कदम किसी मुकाम पर जो थम गए रुक गए तो कुछ नहीं।
गा के सुनाएंगे एक लाइन? कोई और को आता है ये गीत? आता है? आइए आगे, यहाँ आके बैठिए। आजिए आगे आजिए।
एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
आप भी साथ दीजिए, गाइए गाइए।
एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो थम गए तो कुछ नहीं।
बहुत बढ़िया। और दूसरा गीत सुनाएंगे? अच्छा, साथ में ये सुनाइएगा ये गीत आपको क्यों पसंद है, क्या प्रेरणा देता है आपको? एक स्टंजा सुनाएंगे, बस दो लाइन।
अभी तक मुझे बहुत सारे गाने पसंद थे, गाने का शौक भी है, लेकिन कुछ दिनों से एक गीत सुना है और उसका कारण है मुझे क्यों पसंद आया, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बजा था। राइट, वही गाना मेरा फेवरेट गाना बन चुका है अब, क्योंकि बहुत प्रेरणा देता है ये। और कभी भी अगर आपका मन अशांत होता है या किसी भी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, ये गाना सुनते हैं अचानक एक एनर्जी सी आ जाती है। तो वही एक गाने की दो लाइन गाऊंगी मैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति। बहुत बढ़िया। आपका नाम?
मेरा नाम अमृता है, मैं पुणे से आई हूँ।
ओके, बहुत बढ़िया। और कोई सुनाएंगे?
Yes.
हाँ। आप आइए, तब तक ये सुना देते हैं।
ओम शांति। मेरा अलौकिक नाम आनंद है, वैसे मेरा शरीर का नाम विजय कुमार है। एक गीत बाबा की मुरली के ऊपर आधारित है, जिसमें बाबा कहते हैं कि हमें पांच विकारों से जंग जीतनी है और बाजी जीतनी है। तो एक स्टैंजा सुनाऊंगा।
हाँ, सुनाइए सुनाइए।
जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, जीत ही लेंगे बाजी।
माइक थोड़ा उनके सामने पकड़ लूं। हाँ, आप गाइए आप गाइए।
अच्छा, मैं फिर से बोलता हूँ। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा टूटे ना, प्यार का बंधन कल्प का बंधन, कल्प का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। मिलता है जहाँ धरती से गगन, आओ वहीं हम जाए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए तू मेरे लिए मैं तेरे लिए इस दुनिया को ठुकराए इस दुनिया को ठुकराए।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
खूब सजा लें दिल की जन्नत।
एक एक स्टेंजा सुनाएंगे।
खूब सजा लें दिल की जन्नत।
बस एक एक स्टेंजा बढ़ा दो।
प्यार का बंधन टूटे ना प्यार का बंधन टूटे ना।
बहुत बढ़िया। प्यार का बंधन जो हमारा ईश्वर के साथ है और साथ साथ सभी के साथ है वो कभी नहीं टूटना चाहिए।
थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। उनको इतना उमंग है उनको लग रहा है मैं सब सुना ही दूं आज।
नमस्कार एंड ओम शांति। मेरा नाम कृष्ण कुमार अदलखा है जैसे आपको हमने अभी बताया था। तो मुझे एक गीत है बहुत अच्छा लगता है तोरा मन दर्पण कहलाए।
गा के सुनाएंगे।
तोरा मन दर्पण कहलाए रे तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे कार्य कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए रे तोरा मन दर्पण कहलाए। एक मन ही देवता मन ही ईश्वर मन सबका आधार मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार जग से कोई भाग लिखित ना मन से भाग ना पाए तोरा मन दर्पण कहला। ओम शांति।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आवाज भी बहुत अच्छी है। एक एक स्टेंजा सुनाएंगे सिर्फ। ओके।
ओम शांति। मेरे को एक गीत जो सबसे अच्छा लगता है उसका कारण है कि आज हमारे यहाँ पे काफी कम्युनिटीज हैं कोई मुसलमान है कोई है। एक गीत जो बाबा का गीत है जो काफी ज्यादा मुझे पसंद है वो है सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। थैंक यू।
बहुत बढ़िया।
ओम शांति। डॉक्टर गुरदीप बठिंडा से आया हूँ। अपने कॉलेज लेवल में मैं जब पढ़ता था तो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था तो आप उसका एक गीत अभी तक मुझे याद है जिससे प्रेरणा मिलती है रोते हुए आते हैं सब हंसा हुआ जो जाएगा ओ मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है एक बार घर में जाके ये गीत जरूर सुनना। ओम शांति।
अब एक एक स्टेंजा सिर्फ है ना सिर्फ एक स्टेंजा।
ओम शांति। मैं हेमंत मदान। ये जो गीत है इस गीत ये एक तरह से मेरा रिफ्लेक्शन है तो मैं सुनाना चाहूंगा। दिल से निकले बाबा हरदम दिल से निकले बाबा हरदम जीवन हमारा बना दिया माली तू एक मिला अनोखा माली तू एक मिला अनोखा फूल जो तूने बना दिया दिल से निकले बाबा हरदम।
ओम शांति। ओम शांति। लास्ट है ना अभी अगले इसमें क्योंकि
टाइम बहुत हो रहा है ना।
ओम शांति, मेरा नाम एन के तिवारी, मैं लखनऊ से हूँ।
क्योंकि आगे सेक्शन भी है,
एक लाइन सुनाएंगे
इसलिए।
किसने दीप जलाया, दीप जला कर किया उजाला, अपना आप छिपाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया।
बहुत बढ़िया, सिर्फ एक एक लाइन सुनाइएगा, है ना।
इस गीत के पीछे इसका जो कारण है, बीके की तरफ आना, वो जुड़ा हुआ है। कितनी सुंदर तेरी रचना, तू कितना सुंदर होगा, प्यासी अखियां मेरी भगवन, कब तेरा दर्शन होगा। बहुत घुमा मंदिरों में, ब्राह्मण हूँ, सनातन से हूँ, मगर वो मिल नहीं रहा था, उसकी कुछ कायनात है। नदियां पर्वत और नाले तेरी ओर करें इशारे, नदियां पर्वत और नाले तेरी ओर करें इशारे, वन उपवन बनाने वाले, तू कितना सुंदर होगा, प्यासी अखियां मेरी भगवन,
शॉर्ट में मैंने कहा ना, कुछ और भी है।
तेरा दर्शन होगा। मैं उस दर्शन के लिए इधर आया हूँ और कुछ मिला है, उम्मीद है कि समय के साथ कुछ और मिल जाएगा। धन्यवाद।
ओके,
ओम शांति। हम इधर आए तो हमको जो गाना पसंद है आमिर खान साहब का, जो मेरी माँ, ओ मेरी माँ, आप हमको लाए हैं बोलकर हम इधर आए हैं, तो इसीलिए हम तो गाना नहीं गाएंगे, फिर भी वो हमको बहुत पसंद है। ओम शांति।
बस लास्ट है ना, एक लाइन सिर्फ बताइएगा सिर्फ।
ओम शांति, मेरा नाम आर पासवान है, मैं इंडियन ऑयल में मथुरा रिफाइनरी में सीनियर मैनेजर हूँ। वहाँ मैं अपने स्टाफों के साथ में कभी कभी कुछ गेट टूगेदर होता है, उसमें कुछ गाना आता है, तो एक गाना है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है और मैं सबके साथ गाता हूँ, गा तो भी नहीं पाऊंगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स। आप देखिए जितने भी गीत सुना रहे, करीब करीब सबका एक ही सार है, आपसी प्यार, चाहे ईश्वर से प्यार, चाहे आपसी प्यार। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीजें हमें जीवन में प्रेरित करती है, लेकिन किस ओर प्रेरित करती है? जीवन को खुशनुमा बनाना है तो जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है कि जीवन खूबसूरत तभी होगा जब हम सभी का आपसी प्यार होगा और हम सबका एक ईश्वर जो प्रेम का सागर है उससे प्यार होगा। यही चीज तो सीखनी है हमें, और वास्तविकता में प्रेम कोई सिखाने की चीज नहीं है, ये तो अंदर के दिल की आवाज है। तो क्या आप सब आपस में एक दूसरे से प्यार करते, ईश्वर से प्यार करते करते? तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते, ठीक है, पता चल जाएगा कि हमारा आपस में कितना प्यार है। सभी खड़े हो जाइए जल्दी से, और पेयर में खड़े हो जाइए, आमने सामने फेस करके, एक दूसरे के सामने दो दो के पेयर बना लीजिए, खड़े खड़े अपनी जगह पे, आपस में एक दो की तरफ फेस, आगे पीछे भी कर सकते हैं, पीछे कोई एक है तो उसके सामने कीजिए, या कोई सिंगल है तो उनके आसपास चले जाइए, ठीक है। आप दोनों में से एक को डिसाइड कर लीजिए कि आप दोनों में से जो ताकतवर है, जिसके पास थोड़ी ताकत है, वो अपनी राइट हैंड की मुट्ठी बंद कर ले, दोनों में से एक,
आप डिसाइड कर लीजिए कौन करेगा, ठीक है? दोनों में से एक ने मुट्ठी बंद की कोई बात नहीं, इस तरह मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठा अंदर कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए टाइट, ठीक है? मुट्ठी सामने रखिए। अब जो दूसरा आपका साथी है उसको एक हाथ से, देखिए चोट नहीं लगना चाहिए, एक हाथ से उसकी मुट्ठी खोलना है और आपको मुट्ठी टाइट बंद करनी है अपनी। नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, कोई भी एक हाथ से, राइट या लेफ्ट, कोई एक हैंड से खोलना है आपको। खोल रहे नहीं खोल रहे? ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अच्छा, किस किस की मुट्ठी खुल गई? नहीं नहीं, इतने लोगों की नहीं खुली है किस किस की नहीं खोल पाए मुट्ठी, हाथ उठ रही है? बहुत सारे, वो बोल रहे हैं देखो ये खुली नहीं है फिर भी खुली बोल रहे हैं। ओके ठीक है, खड़े रहिए। एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक बार वर्ल्ड फेम बॉक्सर मोहम्मद अली, आप जानते होंगे, एक बार बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे, उनको स्पीच करना तो नहीं आया उस समय, उन्होंने सिर्फ अपने हाथ की एक मुट्ठी बंद की। आप सोच सकते इतने बड़े एक बॉक्सर है, अगर वो अपनी मुट्ठी बंद करेंगे तो कोई खोलने की हिम्मत कर सकता है? उन्होंने कहा जो भी मेरी ये मुट्ठी खोल देगा उसे जो चाहिए वो इनाम में दूंगा। सारे सभा के लोग उठकर आए, पूरी लाइन लग गई, सारी उनके मुट्ठी खोलने की कोशिश कर रहे थे, यहां तक कि लोग उनके मुट्ठी के ऊपर बैठ गए, पूरी ताकत लगा कि मुट्ठी खुल जाए, लेकिन मुट्ठी नहीं खुल रही थी। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, मात्र 3 साल का, वो छोटा सा बच्चा, वो भी सबके साथ स्टेज पर आया तो सब हंसने लग गए प्यार से कि अब ये छोटा बच्चा कैसे मुट्ठी खोल पाएगा इनकी। क्या उस बच्चे ने मुट्ठी खोली होगी उनकी? खोल ली होगी। उस बच्चे ने क्या किया, सामने आया, ताकत तो नहीं लगाई, कैसे खोली? गुदगुदी कर दी बहुत बढ़िया तरीका ये तो लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, वो बच्चा उनके सामने गया और बहुत प्यार से उनसे कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपकी बहुत सारी क्वालिटीज मैं अपने अंदर लाना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? तो क्या किया होगा उन्होंने, हाथ मिलाए। तो आप सब मुट्ठी में ताकत लगा रहे हैं, हम प्यार की बात कर रहे थे तो आप भी तो मुट्ठी खोल सकते थे, तो चलिए अभी प्यार से हाथ मिला लीजिए, ताकत मत लगाइए प्यार से। ओके, थैंक यू, बैठिए। देखिए प्यार से, प्यार एक ऐसी शक्ति है, बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकती है, बड़ी से बड़ी ताकत को झुका सकती है। इसलिए हमने गीत सुना, जिंदगी प्यार का गीत है। और वास्तव में अगर यही प्यार हमारा परमात्मा से हो जाए तो परमात्मा पिता जो इस सृष्टि पर हम बच्चों से भी प्यार करने आता है, उस परमात्मा, उस खुदा को अगर हम जान ले और उससे ये सच्चा प्यार हमारा जुड़ जाए तो जिंदगी निश्चित रूप से हमेशा के लिए खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन उस परमात्मा पिता से प्यार के साथ, वो परमात्मा पिता हमें सिखाते हैं कि हम जिस समाज में, जिस परिवार में रहते, उस परिवार के साथ भी हमारा बहुत प्यार हो। लेकिन आज के समाज में, वर्तमान समय में सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? इसी प्यार की कमी है। हमारी एक बड़ी दीदी है, वो हमें कहानी सुना रहे थे, उस कहानी को सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए कि सचमुच आज की दुनिया में, आज हम विज्ञान की दुनिया में जी रहे, बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर ली हमने, हम एक देश से दूसरे देश, विश्व के दूसरे कोने में, आकाश पाताल तक पहुंचे हैं, लेकिन दिलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने कहानी मुझे सुनाई, मैं शॉर्ट में आपसे शेयर कर रही हूं। एक बार एक बच्चा और उसकी माँ, परिवार में दो ही सदस्य थे, पिता की मौत के बाद माँ ने बर्तन मांझकर घरों में काम करके बच्चे की परवरिश की। उस माँ की एक आंख नहीं थी, वो कानी थी, एक आंख कटी हुई दिखाई देती थी जिसके कारण उसकी खूबसूरती खत्म हो गई, वो बहुत कुरूप दिखाई देती थी। बच्चे को बहुत प्यार से परवरिश दी, पालना दी, बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, बच्चा स्कूल जाता था, बच्चे आपस में बात करते, तेरी माँ तो कानी है, तो बच्चे को बहुत बुरा लगता था, यानी वो अपनी माँ को कहता था तू कानी क्यों है और मेरी माँ क्यों है, लेकिन माँ फिर भी कुछ नहीं कहती थी, बहुत प्यार करती थी बच्चे को। बच्चा बड़ा हुआ और बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंचा, विवाह हुआ, बच्चे हुए, तो उस बड़ी पोस्ट पर होने के कारण बच्चे को अपनी माँ को साथ रखने में कहीं ले जाने में बहुत शर्म आती थी कि मेरी माँ तो सुंदर नहीं दिखती, गांव की रहने वाली है, उसका रहन सहन भी और एक तो कानी भी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कुछ बोलेगा, इसलिए कभी अपने साथ नहीं ले जाता था। इवन उसे अपने गांव भेज दिया कि ठीक है मैं वही पैसे भेज दूंगा, तुम वही रहो। एक बार किसी कारण से माँ की तबीयत बहुत खराब हुई, वो अपने बच्चे के पास शहर आई, जो उसने दरवाजा खटखटाया तो नौकर ने आकर कहा घर में कोई नहीं है। बच्चे ने देखा बेटे ने माँ आई है, कहा बोल दो कि घर में कोई नहीं, सब बाहर गए हैं। लेकिन उसने आवाज सुनी, उसके पोते कह रहे हैं कि कौन अंधी कानी औरत हमारे कुरूप हमारे घर के सामने भिखारी आ गई है, इसको निकाल दो यहां से। और बेटा भी कह रहा है हाँ हाँ, जो भिखारी आई है ना उसको जो चाहिए दे दो और रवाना कर दो। वो माँ बीमार थी, वो वहां से निकल गई, लेकिन उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। रास्ते में जाते कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बेटा भी कुछ काम से उसी रास्ते से निकल रहा था। उसने देखा काफी भीड़ लगी हुई है, तो सोचा क्या हुआ, देखा तो जाए, तो कहा कोई औरत है गांव की, उसका कार से एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई है। उसने कहा सोचो देखा देख तो लू कौन है आके, देखा तो उसी की माँ थी। उसने उसके हाथ में कागज देखा, उस कागज को निकाला तो उस कागज में कहानी लिखी थी घटना जीवन की उसके। उसने अपने बेटे के नाम पत्र लिखा था कि बेटा तू मुझे हमेशा कुरूप और कानी कहता है, क्या तुझे पता है कि मैं कानी क्यों हूं? क्योंकि जब वो तू छोटा था, खेल में एक चोट आई थी और तेरी आंख चली गई थी, तो तुझे आंख की जरूरत थी, तो मैंने अपनी आंख तुझे दी थी और तब से इसीलिए मैं कानी हूं। सच्चे प्यार की कमी, माँ बाप तो सचमुच दिल से प्यार करते हैं, लेकिन हमें उस प्यार को समझने की जरूरत है। ठीक इसी तरह परमात्मा पिता, वो भी हमें सच्चे दिल से प्यार करता है, लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं इस अंधी दौड़ में, इस भौतिकता में, और इसलिए उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, उसे देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो हमारा माता पिता है। हम जब बहुत दुखी होते हैं तो इस संसार में आता है और उसे आना ही पड़ता है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का दुख कभी देख नहीं सकते। तो हम सभी कहते हैं कलयुग का अंत समय चल रहा है, दुख की अति का समय, हम सभी बहुत तनाव में परेशान दुखी अशांत हैं। तो क्या हमारा माता पिता वह आसमान के पार अपने घर में बैठा रहेगा हमें दुखी देखकर? नहीं, उसे नीचे आना ही होगा। और निश्चित वो इस संसार में आ चुका है, सिर्फ हम उसे पहचान नहीं पा रहे, उसकी असलियत को जान नहीं पा रहे हैं। आवश्यकता उसे जानने की, पहचानने की। और वो जो कुछ हमारे लिए कर रहा है, वो जो देने आया है, उसे अनुभव करने के, वो आया है हमें इस संसार के दुखों से दूर करने के लिए, हमें तनाव से मुक्ति देने के लिए, हमारे जीवन में सुख शांति लाने के लिए, और वो हर पल हमें मदद करने के लिए तैयार है। सिर्फ आवश्यकता है उसे सच्चा साथी बनाने के, उसे पहचानने के। आप सब यहाँ सुन रहे हैं, आज आपको बताया कि वास्तव में वो खुदा दोस्त जिसको कहते हैं, वो परमात्मा पिता आखिर है कौन? आप सभी ने सुबह परिचय सुना उनका, कि कल आपने सुना हम आत्माएं हैं, तो हम सबका पिता कौन है? वो परमात्मा पिता जो इस संसार में आता है हमारे दुख हरने के लिए, और वो हर पल हमारी मदद करता है। सिर्फ जरूरत है हमें उसके समीप रहने की, उसके छत्र छाया में रहने के। वो हमें सारी बाधाओं से पार कर देता है। एक छोटी सी कहानी, एक बार एक व्यक्ति जो भगवान को दोस्त मानता था और उसे बहुत प्यार करता था, एक दिन स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा दोस्त तुम्हें जो मांगना है मुझसे मांग लो। उसने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप साथ रहो मेरे, यही वरदान दे दो, हर पल मेरे साथ रहना। उसने कहा ठीक है मैं हर पल साथ रहूंगा। उसका जीवन व्यतीत हो गया पूरा, लास्ट मोमेंट, लास्ट टाइम था बिल्कुल। भगवान फिर से उसे स्वप्न में प्रसन्न हुए और पूछा कि आज तो कुछ मांगो तुम मुझसे, मैं कुछ देना चाहता हूं अपने दोस्त के खातिर। उसने कहा भगवान अगर आपको देना ही है ना तो एक चीज मुझे दो आप। उसने कहा बताओ क्या चाहिए? उसने कहा मैंने आपके साथ जो जिंदगी के इतने हसीन पल व्यतीत किए हैं, मैं उस जिंदगी को दोबारा कुछ पल के लिए देखना चाहता हूं, उस आनंद को महसूस करना चाहता हूं इस अंतिम क्षण में। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हें जरूर अनुभव कराऊंगा। और उसके सामने एक बहुत सुंदर दृश्य बना दिया उन्होंने, बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत हरियाली है, बाग बगीचे हैं, पहाड़ियां, झरने, बहुत सुंदर नजारे और उसमें से एक रास्ता निकल कर जा रहा है। भगवान ने कहा ये तुम्हारी जिंदगी और ये तुम्हारी जीवन यात्रा। उस पर देखा कि दो व्यक्तियों के पद चिन्ह बने हुए हैं। भक्त समझ गया कि एक तो मैं हूं और एक मेरा भगवान मेरे साथ चल रहा है। वो बड़ा आनंदित होने लगा कि मेरी सारी जीवन यात्रा में भगवान मेरे साथ है। लेकिन अचानक वो रास्ता एक मरुस्थल में जाकर पहुंचता है जहां पर कोई हरियाली नहीं है, पानी का नामो निशानी, चारों तरफ आंधी चल रही है, तेज धूप है। और ऐसे समय उस रास्ते पर सिर्फ एक ही पद चिन्ह बने हुए पैर के। तो भगवान के इस लीला को देखकर, दृश्य को देखकर भक्त के माथे पर सल आ गए। भगवान ने कहा क्या बात है, क्या तुम्हें तुम्हारी जीवन पसंद नहीं आ रही है? उसने कहा भगवान एक सवाल है, आपने मुझसे वायदा किया था कि आप हर पल मेरे साथ रहेंगे, तो ये क्या, जब मेरे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित था, सब कुछ अच्छा था, तब तो आप मेरे साथ थे, लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में परिस्थितियां आई आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? भगवान मुस्कुराए और उसे कहा प्यार से, मैं तुम्हारे साथ ही था हमेशा, थोड़ा ध्यान से देखो कि जो रास्ते पर पदचिन्ह देख रहे हो वो किसके हैं। उसने बड़े गौर से देखा तो देखा कि ये तो भगवान के पदचिन्ह है पैर के। उसने दूसरा सवाल तुरंत किया, तो भगवान मैं कहां हूं फिर, क्योंकि जीवन यात्रा तो मेरी है ना। भगवान ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि देखो, जब तुम्हारी जीवन में सब कुछ अच्छा था तो मैं साथी बनकर साथ चल रहा था, लेकिन जैसी परिस्थिति आई तुम्हारी जीवन में तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया और मैं इस रास्ते को पार करके आगे बढ़ा। मैं इस ईश्वरीय ज्ञान से पिछले 32 साल से जुड़ी हुई हूँ और बाबा के घर में पिछले 20 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रही हूँ समर्पित रूप में। मैंने उस छोटी सी उम्र से लेकर आज तक यही अनुभव किया है कि जब भी कोई मुश्किलें आती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, लेकिन वो ठीक इसी तरह हमें गोद में उठाकर बाहर निकाल देता है। कभी महसूस ही नहीं होता है कि जिंदगी में कोई पेपर भी आए हैं, कोई परिस्थितियां भी आई हैं, परंतु ऐसी स्मूथ लाइफ निकल रही है जैसे हमेशा ही उसकी गोद में, और वो चल रहा है, मैं तो चल ही नहीं रही हूं, चला वो रहा है। उसकी वजह, क्योंकि बचपन में ही हमें एक चीज पक्की करा दी, सिखा दी हमारे माता पिता ने कि तुम्हारे असली माता पिता वही है, हम तो सिर्फ ये शरीरधारी तुम्हारे इस जन्म के जन्म देने वाले माता पिता है, माता पिता तो वही है और पालता वही है, इसलिए एक उसी से संबंध रखना और वो हर पल तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे देहधारी माता पिता जो है उनके एक लिमिट्स है, मैं कहां रहती हूं वो कहां रहते हैं, लेकिन उस परमात्मा पिता के लिए तो कोई लिमिट्स नहीं है ना। मैं विश्व के किसी भी कोने में रहूं, वो एक पल में मेरे पास आएगा और मेरी मदद करेगा, मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। और इसीलिए उसे सुप्रीम माँ और सुप्रीम फादर कहा गया है। वो पिताओं का भी पिता और माताओं की भी माता है। एक उस पर विश्वास और एक उसके सानिध्य में सदा रहना। जब हम उनके सानिध्य में और समीप हैं, तो उनके छत्र छाया में हम सदा सुरक्षित हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से अपनी जीवन के अनुभव के आधार पर एक बात आज जरूर कहना चाहूंगी कि आप सब ईश्वर के दर पर आए हैं। जिस दर पर आज तक आप बहुत चक्कर लगाते रहे भगवान को ढूंढने के लिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहां कहां नहीं गए होंगे, लेकिन भगवान इस धरती पर आया है, लेकिन बहुत साधारण रीति वो हमें अपना बना रहा है और हमारे लिए सब कुछ अपना न्योछावर करने के लिए हमारे सामने खड़ा है। सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि मैंने तो अपनी झोली फैला दी, बाहें फैला दी हैं, बच्चे बस मेरी बाहों में आ जाओ। अब आपको सोचना है कि भगवान मेरे सामने बाहें पसार कर खड़ा है, अब मुझे उसकी बाहों में जाना है या मुंह मोड़कर वापिस उसी दुनिया में जाना है जहां हम थे। मेरा कहने का भाव ये नहीं कि आप सब छोड़कर यही रह जाए, सिर्फ भाव ये कि अपने मन और बुद्धि को अब उस परमात्मा पिता के बाहों में समर्पित कर दीजिए, जिस परमात्मा पिता का आपको असली परिचय आज मिला। और आगे हम उनके बारे में सुनेंगे, आगे के सेशंस में अच्छी तरह से उनको जानेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि यहां एक सीमित रूप में ही आपको कोई चीज मिलेगी, क्योंकि सीमित समय है। लेकिन जब आप यहां से वापस लौटेंगे तो जब आप भगवान के घर में आ चुके एक बार, तो यहां से आप जाए तो भगवान के बच्चे बनकर जाइए। आप एक गृहस्थी, एक वैज्ञानिक, एक अभियंता बनकर नहीं, भगवान के बच्चे बनकर जाइए। और आप जहां भी जाएंगे वहां पर भगवान का घर है। ये सेवा केंद्र सभी जगह है, वहां जरूर जाइए और आगे का कोर्स कंप्लीट कीजिए। इस ज्ञान को अच्छी रीति समझिए, आत्मसात कीजिए। और जब भगवान आया है वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो हाथ पीछे मत कीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक बार चांस मिलता है, इस मौके का फायदा उठाइए, चांस लीजिए और चांसलर बनिए। तो यहां से आप जब जाए तो पक्के बच्चे बनकर, और दोबारा जरूर यहां आए, तब कॉन्फ्रेंस में नहीं, आप यहां के मेहमान बनकर नहीं, शिव बाबा के बच्चे बनकर आइए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके चेहरे पर, आपकी जिंदगी में एक नया उजाला, नई रोशनी, नई खुशी और नई खूबसूरती होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जितने भी यहां बैठे, अगली बार जब हमसे मिलेंगे तो हम सब बाबा के बच्चे बनकर मिलेंगे। मिलेंगे सभी? दोबारा मिलेंगे, हाँ या नहीं? जरूर मिलेंगे। तो हम सभी एक छोटा सा अभ्यास अभी करेंगे, एक छोटी सी अनुभूति एक गीत के साथ। हम सब उस परमात्मा पिता से आज संकल्प करें अभी कि हम आपके दर पर आए हैं, आपके सम्मुख आए हैं, तो आज आपसे वायदा करते हैं कि हम आपके बच्चे बनकर, आपको साथी बनाकर अपनी जिंदगी को सहज करेंगे, अपनी जिंदगी को आसान करेंगे, जिंदगी की मुश्किलों को समाप्त करेंगे, क्योंकि वो साथी बनकर हमारे सामने खड़ा है। मैं तो भगवान से सिर्फ इतना ही कहती हूं और आपसे भी यही कहूंगी, इतना ही आज उससे कहना कि मेरी खुश नसीबी के लिए यही काफी है कि मैं तेरी बच्ची हूं। मेरी खुश नसीबी के लिए इतना ही काफी है कि मैं तेरी बच्ची हूं, और मेरे फक्र के लिए ये भी काफी है कि तू ही मेरा मुर्शिद है और तू ही मेरा इष्ट है। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूं, तू वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूं, बस मैं वैसी बन जाऊं जैसा तू चाहता है, बस मैं वैसी बन जाऊं जैसा तू चाहता है। भगवान तो वैसा ही है जैसा हम सभी चाहते हैं, लेकिन अब हम यहां से वैसे बनकर जाए जैसा वो माता पिता हम बच्चों के लिए चाहता है। क्या बनेंगे आप सभी? बनेंगे? तो दो मिनट के लिए हम सभी उस अपने माता पिता, परमात्मा पिता का बहुत दिल से आह्वान करेंगे आज यहां और इसी जगह पर, क्योंकि जब आप प्यार से उसे याद करते तो न वो समय देखता है, न जगह देखता है, न व्यक्ति देखता है। दिल से आवाज दी है तो वह हाजिर हो जाता है। तो हम दिल से उनका आह्वान करेंगे कि हम आज से उनकी छत्र छाया में, उनकी गोद में हैं, उनके बनकर, उनकी शक्ति लेकर यहां से जाएंगे और दोबारा उनके बच्चे बनकर वापस लौटेंगे। ठीक है, करें आह्वान हम सभी उनका। चलिए, अलर्ट होकर बैठ जाइए सभी। और अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, अपने आप को देखिए। भगवान ने ये इतनी खूबसूरत जिंदगी मुझे दी है, जिंदगी में सब कुछ दिया है, अब मेरी जिंदगी और हसीन बन गई है क्योंकि अब स्वयं भगवान मुझे मिल गया है। हे मेरे माता पिता, मेरे खुदा दोस्त, आज मैं आपके बच्चे बनकर, आपका बच्चा बनकर दिल से आपको आवाज दे रही हूं कि आप मेरी खातिर अपना आकार सिंहासन छोड़कर आ जाओ और मुझे अपने किरणों के बाहों में ले लो, अपनी प्रेम के गोद में समा लो। विजुअलाइज कीजिए, परमात्मा पिता एक बहुत सुंदर दिव्य चमकते हुए सितारे के रूप में आकाश से उतरकर मेरे समीप आ गया है। मेरे मस्तक के ऊपर चमक रहा है। वो दिव्य सितारा स्वयं परमात्मा पिता है और महसूस कीजिए कि सर्वशक्तिवान उस परम ज्योति से, परमात्मा पिता से बहुत सुंदर सुनहरे प्रकाश की किरणें प्रवाहित हो रही है और वो किरणें मुझ पर पड़ रही है। जैसे परमात्मा पिता अपने किरणों के बाहों से मेरे मस्तक को सहला रहे हैं, उनकी शक्तियां और उनका प्यार मुझ पर किरणों के रूप में बरस रहा है और उनके उस शीतल प्यार को मैं महसूस कर रही हूं। उनके प्यार में खो जाइए। जब हम उनकी बाहों में आ चुके हैं तब उनकी गोदी से बाहर मत जाइए। जब हम जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे तो दो लाइन जरूर सुनाना चाहूंगी मैं। अभी कई जीत बाकी है, अभी कई हार भी बाकी है, अभी जिंदगी का पूरा सार बाकी है। अभी तो चलना शुरू किया है मंजिल की ओर, अभी तो चलना शुरू किया है मंजिल की ओर, ये तो सिर्फ एक पन्ना है, अभी तो किताब पूरी बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है।